करती, बाबा कहते हैं अंतिम समय का पेपर अचानक होगा, एक सेकंड का ही होगा। इस पेपर में पास होने के लिए हर एक बच्चे को तैयारी करनी है, तभी विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। आज का विषय है अंतिम समय की तैयारी। इस विषय पर मार्गदर्शाएंगे दिलाराम बाप के दिल के सितारे आदरणीय भ्राता राजयोगी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। हम सभी आपका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आप 1986 से ईश्वरीय ज्ञान योग सेवाओं से जुड़े हैं। वर्तमान समय आप सीनियर कंसल्टेंट इन ट्रॉमा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप डबल डॉक्टर हैं, मेडिसिन द्वारा शरीर के दुखों का इलाज और मेडिटेशन द्वारा दिल का दुख दूर करते हैं। आपने 1998 में एक विशेष प्रोजेक्ट कैट प्रोजेक्ट की रचना की, जिसमें दुखी दिल शिकस्त हार्ट पेशेंट्स को पहले आपने प्यार और दुआओं की दवा देकर रूहानी इलाज किए, फिर जिस्मानी ट्रीटमेंट देकर हार्ट को हील कराते रहे। आपने इस प्रोजेक्ट द्वारा गवर्नमेंट तक ब्रह्म कुमारीज की आवाज पहुंचाई। इसके लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप अपनी चलन चेहरे शिक्षाओं से पेशेंट्स को भी पेशेंट्स का रूप स्वरूप बनाते हैं। आप ज्ञान का मनन चिंतन कर ज्ञान की गहराई योग की गहराई अनुभूति की गहराई में ले जाते हो। आपका हम पुनः दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी हम सुनेंगे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से।
ओम शांति। अंतिम समय की तैयारी, इस विषय पर रुझान करने से पहले हम सभी एक मिनट के लिए इस देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को डिटैच कर लीजिए। मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं। चलिए सभी अशरीरी आत्मा बनकर परम धाम घर में पावर हाउस अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाइए। ओम शांति। जब हम अंतिम समय की बात करते हैं, एक तो हमारे में से किसी का भी अंतिम समय हमें पता है क्या? कभी भी हमारा अंतिम समय आ सकता है। हम सोने जाएं और सुबह उठे ही नहीं। कभी भी चलते चलते खाते खाते कुछ भी कार्य करते, आज देखते हैं ना लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, अचानक से हार्ट अटैक आते हैं, कैसे भी डेथ हो जाती है ना। तो ये नहीं कि हम विनाश होगा तभी हमारा अंतिम समय, नहीं, हमारा अंतिम समय कभी भी आ सकता है। मम्मा कहा करती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा अंतिम समय आप चारों तरफ देखते हैं, आज चारों तरफ हलचल है। आज का समय का इशारा भी है ना, आज अव्यक्त इशारा कैसा है, चारों तरफ की हलचल में अपने आप को सेफ्टी का साधन क्या बनाना है, अपनी स्थिति को कैसा बनाना है, देही मानी आत्म मानी विधेयी अशरीरी निराकारी बीज रूप स्थिति बनाओ, इसके बहुत गहरे अभ्यास होने चाहिए। तो आज हम देखते हैं, और प्लस अगर हम देखें आज तन में भी हलचल है, तन के कितने रोग हैं, स्पेशली हार्ट अटैक तो ऐसी बीमारी है जिसका हम पिछले 28 साल से काम कर रहे हैं। कैसे दिलाराम शिव बाबा कैसे दिल की बीमारी को ठीक कर सकता है, उसका प्रयोग करके हम ब्लॉकेज खोल सकते हैं। डायबिटीज कितनी बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर कितना बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी है ना, और कैंसर कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो आज बीमारियां बहुत अभी सर्वे हुआ था उसमें पता लगा कि हर आदमी को 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं बॉडी की, तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मन के अंदर बहुत हलचल है, मन में भी स्थिति कभी कैसी होती है, कभी कैसे ले जाता है मन, कैसे डांस कराता है आदमी को। आजकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। धन में भी हलचल है मन, और संबंध संपर्क में भी हलचल है। संबंध संपर्क भी आज कैसे हैं, कभी अचानक से हमारे सामने जिनके साथ हम वर्षों से रह रहे होते हैं, अचानक से वही आदमी से वही व्यक्ति से हमारे पेपर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों में कर्मों के हिसाब किताब हैं, तो वो सामने फाइल पेपर खुल जाते हैं तो हमारे सामने हलचल आनी शुरू हो जाती है, परिस्थिति ऊपर नीचे कर देती है। तो ऐसी अंतिम प्रकृति के तत्व भी देखो अभी ना, जो कभी मिडल ईस्ट में कभी बाढ़ नहीं आती थी, अब पिछले 3 साल से उनमें बाढ़ आनी शुरू हो गई, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, कितने देशों में, जो यूरोपियन देशों में कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी, अभी उन यूरोपियन देशों में बाढ़ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में और देशों में कहां कहां बाढ़, कहां कहां कैसे कैसे समाचार आप रोज सुनते हैं। तो चारों तरफ हलचल है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। 1945 में दो एटम बम यूज हुए थे, 45 साल कोल्ड वॉर रही अमेरिका और रशिया के बीच में, सोवियत संघ के बीच में, पर कभी भी ऐसी स्टेज में नहीं रहे कि वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स मिसाइल्स पे लगा दिए जाए, रेडी टू यूज मोड में हो, और वो स्थिति है रेडी टू यूज मोड में है। चाहते हैं पुतिन और दूसरे जो है ना अमेरिका और राष्ट्रपति जो रशिया के राष्ट्रपति, वो यूज करें, किंतु कौन यूज नहीं करने देता है। एक मुरली में आया था पांडव जो है क्या कर रहे हैं, यादवों के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर हमारी स्थिति संपूर्ण बन जाए तो क्या हो, यादव लड़ाई करने को बिल्कुल तैयार है। अब हमारी अंतिम स्थिति कैसे बनेगी, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, तैयारी हमारे शायद लक्ष्य के अनुसार होती है, मुझे क्या बनना है। अब आप अपने आप को देखना, ध्यान से देखना, हमें क्या बनना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं। राजयोग से राजा बनना होता है ना, अब देखते हैं हम कैसे, हम हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हमें असतन में आना है, असतन माना विघ्न विनाशक, दिखाते ना अंगूठी में अष्टतन दिखाते ना, तो बीच में शिव बाबा होता है, बाकी चारों तरफ अष्टतन होते हैं, वो विघ्न विनाशक के लिए अंगूठी पहनते हैं। कोई भी विघ्न आए तो वो अंगूठी पहनते हैं, रत्नों 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। तो विघ्न विनाशक स्थिति अर्थात मास्टर बीज रूप, सबसे हाइएस्ट स्टेज कौन सी है आत्मा की, बीज रूप बाबा है, पूरे कलवृक्ष का बीज रूप है बाबा, वो ऊपर है, उल्टा झाड़ है ना, तो बाबा बीज रूप है। और जो आत्माएं मास्टर बीज रूप बनके बीज रूप बाप से कंबाइंड होकर सारे कलवृक्ष को सकाश देती है वो असतन बनती है। तो ऐसी आत्माएं विघ्न विनाशक हैं, उनके निरंतर बाप समान स्थिति है, वो अपने आप को निरंतर बाप से कंबाइंड के पूरे कलवृक्ष को, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग की सारी आत्मा को सकाश देती है। आज के मूल्य में था सकाश देना पड़ेगा, सूरज के ज्ञान सूर्य बन करके सारी सभी आत्मा को सकाश। तो ऐसी आत्मा विश्व महाराजन बन जाती है अष्टतन। तो हमारा वो वाला, अगर हमें सचमुच में अष्टतन में आना है, अष्टतन तो वैसे तो डिसाइड हो चुके हैं लगभग, पर दो ही अभी तो डिसाइड हुए हैं, कौन कौन, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, दादियां गई हैं। दादियों की कैसी स्थिति थी, क्योंकि मैं दादी के साथ बहुत रहा हूं, बड़ी दादी के साथ, निर्मल शांता दादी, शांतामणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी जी और सभी दादियों के साथ मेरा, रतन दादी, उनको देखा है मैंने कैसे अंतिम समय में कैसे उनकी तैयारी थी। कैसा भी शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, एकदम कर्मातीत, अशरीरी, निराकारी, बीजरूप, तन में क्या हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, बुखार 102 है, तो भी एकदम मुस्कुरा रहे हैं, जरा भी उनको फीलिंग भी नहीं कि हम बीमार हैं, शरीर अलग है मैं आत्मा अलग हूं, ऐसी स्थिति में वो स्थिति। तो ऐसी आत्माएं, ऐसा पुरुषार्थ अगर हमारा हो मास्टर बीजरूप, तो हम क्या बनेंगे, हमें क्या बनना पड़ेगा, मास्टर बीज रूप बनना पड़ेगा, अगर सतन में आना है, अगर 100 की माला में आना है। अच्छा, आप में से हाथ उठाएंगे, 100 की माला में कौन आना चाहता है, 108 की माला में कौन कौन आना चाहता है, हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। बाबा ने कहा ना, अगर आप पुरुषार्थ करो मैं माला में लड़ी लगा दूंगा, ऊंचा ऊंचा हाथ उठाओ, देखते थे कौन कौन। उसकी कंडीशन नीचे कर, उसकी कंडीशन क्या है, वो आत्माएं निर्विकारी है, निर्विकारी हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं। सो आत्माएं ना, जो आठ तो हो गए अष्टतन हो गए, बाकी सो आत्माएं जो है हर दाना पवित्र है। हर दाने को लोग मस्तक पे लगाते हैं उसको, और बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं सब धर्म वाले, चाहे वो हिंदू हों, चाहे इस्लाम वाले हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे सिख धर्म में भी सबके माला होती है, 108 की माला सबके पास होती है। तो 108 की माला के रत्न जो है आठों, ये सारे रत्न क्यों पूज्य हैं? क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी हैं, पवित्रता है उनका। और पवित्रता बनने के लिए क्या करना चाहिए? पवित्र बनने के लिए, ऐसा निर्विकारी बनने के लिए हमें कौन सी स्थिति चाहिए? निराकारी बनकर के निर्विकारी, निराकारी बनकर निर्विकारी, निराकारी बाप को जब याद करते हैं, निरंतर याद में रहते हैं, ऐसी स्थिति बने निराकारी। निराकारी अशरीर में क्या फर्क है? अशरीर स्थिति में थोड़ा हम देह भान से, शरीर से अलग हुए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा मैपन मेरापन रहता है। अशरीर स्थिति का अभ्यास करते करते मैपन मेरेपन का, मेरापन का विनाश हो जाता है। मैं बाबा ने कहा ना, मैपन मेरेपन की पूछ कल की मुरली में शाम को, वो जब तक सुहा नहीं होती है, तब जब मैपन मेरेपन का त्याग होता है तो निराकारी स्थिति आती है। तो तब निराकारी बन के निराकार बाप से कंबाइंड होते हैं निराकारी वतन में। तो निर्विकारी मन हमारे जो पापकर्म बनते हैं, पापकर्म किससे, पापकर्म विकर्म में क्या फर्क है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश किए हुए कर्म पापकर्म कहलाते हैं, जिसमें हम खुद को भी दुख देते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। ये पाप कर्म करने का समय दो आत्माएं तो चाहिए, सामने 50 लोग भी हो सकते हैं कि मैं 50 को ऐसी बातें करूं कि उनका दिमाग ही खराब हो जाए, उनको अंदर काम विकार की भावना जग जाए, क्रोध आ जाए, मैं सबको क्रोध में कर दूं, सबको दुखी कर दूं, लोभ करूं, उनको धोखा दूं, मोह करूं 50 लोगों से, या अहंकार आकर के उनको हर्ट करूं। मिनिमम दो लोग चाहिए। और ये ऐसी जैसे सूखी लकड़ी होती है ना, उसको आग लगाओ तो क्या है, तुरंत जल के भस्म हो जाती है। तो ऐसे आत्मा के सातों एनर्जी, ज्ञान अथा सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ स्नेह, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, और आठों शक्तियां एकदम भस्म हो जाती है पांचों विकारों के बनने से। तो निराकारी जब ये विकर्म क्या होता है, जो पांच जो ये तो हो गया, इन पांच विकारों के वश में जब कर्म करते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या आता है, उससे हमारे अंदर हमारी एनर्जी खत्म। जैसे एक सूखी गीली लकड़ी होती है ना, गीली लकड़ी को आग लगाओ तो क्या होता है, वो जलती भी नहीं है, धुआं देती रहती है। तो जो पांच विकार वश कर्म से हमारे अंदर आसुरी संस्कार आदतें बन जाती, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों के अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, गुण दिखाई देने बंद हो जाते हैं, हम हंस की बजाय बगले बन जाते हैं। तो जैसे हंस की विशेषता क्या है, उसके सामने अगर 1000 कंकड़ पड़े हों, बीच में एक या दो मोती पड़े हों, उसको कंकड़ नजर नहीं आते, सिर्फ मोती दिखाई देते। और बगले के सामने 1000 मोती पड़े हों कि तो बीच में एक दो कीड़े पड़े हों, लार्वा पड़े हों, तो उसको क्या नजर आता है, मोती नजर नहीं आते, क्या नजर आता है, कीड़े नजर आते हैं। तो हमारी भी हालत ऐसी हो जाती है। तो आलस्य, अलबेलापन, दोष दर्शन, बदला लेने की भावना, निश्चय और विश्वास की बजाय शक और अनुमान, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह की बजाय चिंता, निर्भय की बजाय डर, भय लगने लगता है, धैर्यता की बजाय जल्दबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपटीशन, कंपैरिजन, और विश्व कल्याणकारी की बजाय ईर्ष्या और द्वेष। ये हमारी संस्कार बन जाते हैं, आदत, इसको आसुरी संस्कार कहते हैं। इसके कारण फिर और आगे और भी एक एक दस संस्कार और भी हैं। तो ये जो नेगेटिव संस्कार से क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारे अंदर वैध संकल्प चलते हैं, वैध समय जाता है, जो बाबा ने कहा नष्ट मुआ बनने के लिए। जब भी मैपन मेरापन आता है, देवान देवीमान आता है, तो उससे वैध संकल्प, वैध समय, वैध बोल, वैध कर्म, वैध संबंध संपर्क हमारे अंदर पैदा होते हैं, और उसी कारण मोह पैदा होता है। तो ये जो हमें ये जो बात है, तो ये हमें निराकारी बनके निराकारी बाप से कंबाइंड तो ही हम निर्विकारी है, अर्थात हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और इनके जो इससे जो आसुरी संस्कार बनते हैं, आलस्य, अलबेलापन, दोष दर्शन, बदला लेने की भावना, शक अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य के बजाय हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, आत्मा सदा अलर्ट है, एक्यूरेट है। दोष दर्शन के बजाय हम क्या गुण दर्शन करते हैं, बदला लेने की भावना के लिए रहम दिल, शक अनुमान के लिए निश्चय और विश्वास, स्वयं में निश्चय विश्वास, बाप में स्वयं निश्चय और विश्वास, ड्रामा में निश्चय और विश्वास, और परिवार लौकिक अलौकिक परिवार में भी निश्चय और विश्वास, चिंता नहीं बेफिक्र बादशाह, और डर नहीं निर्भय, जल्दबाजी नहीं धैर्यता, और ईर्षा द्वेष नहीं विश्व कल्याणकारी के भाव। तो ऐसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो ये है निर्विकारी स्थिति, खाली विकार भी नहीं संपूर्ण निर्विकारी, मतलब जिनके जो बाल बच्चे हैं वो भी हमारे अंदर नहीं रहते। तो ये ऐसी स्थिति वाले, संपूर्ण पवित्रता वाले, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति वाले, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, तो ये आत्माएं क्या बनती हैं? विजयमाला के मणके बनते हैं। ये आत्माएं निर्विघ्न रहती हैं, इन पे किसी चीज का भी अटैक नहीं हो सकता है। ये आत्माएं इसलिए 108 का एक 108 की माला, पहले अष्टतन और 100। तो मुझे मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे अष्टतन में आना है तो कैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? मुझे मास्टर बीज रूप बनना पड़ेगा। निराकारी से उपस्थिति मास्टर बीज रूप है। जैसे हम निर्विकारी बनते हैं तो हम एकदम मास्टर बीज रूप बन के कल्पवृक्ष जड़ में बीज रूप आपसे कंबाइंड बन जाते हैं, कंबाइन होकर सारे कल्पवृक्ष की सेवा करते हैं। और जो ये निर्विकारी आत्माएं होती हैं, ये तने के आदि में शुरुआत, तना जहां शुरू होता है ना पेड़ का, कल्पवृक्ष का, बिल्कुल वहां पे ये आत्माएं रहती हैं, जड़ के बिल्कुल नजदीक। तो सर्व आत्माओं को सकाश इन द्वारा भी पहुंचता है। फिर नंबर आता है 16108 की माला का, फिर अशरीर स्थिति का नंबर आता है। अर्थात हमें अगर अगर हमको किसमें आना है, 16108 की माला में आना। 16108 जो आते हैं वो ये नहीं कि त्रेता में आते हैं, वो भी सत्ययुग में आते हैं, किंतु उसमें राजा रानी नहीं होते, साहूकार परिवार साहूकार होते हैं। तो साहूकार अर्थात उसमें उनके पास भी बहुत धन रहता है, उनके बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, किंतु वो 16108 वाले आत्माएं सत्ययुग में राजा नहीं बनती हैं, रॉयल फैमिली उनकी नहीं होती है, उनकी रॉयल फैमिली बनती है जाकर के त्रेता में। और जो बाबा के जो बच्चे जो दास दासी बन के रहते हैं रॉयल फैमिली में सत्ययुग में, वो त्रेता के अंत तक वो भी राजा बन जाते हैं, वो रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ना, इसलिए साहूकार बनना अच्छा है दास दासी बनने की बजाय, क्योंकि शुरू शुरू में जो त्रेता में राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं? साहूकार राजा बनते हैं, वो रॉयल की रॉयल फैमिली बनती है, और बाद में जो दास दासी होते हैं रॉयल फैमिली में सत्ययुग के, वो फिर बाद में वो त्रेता के अंत तक वो भी राजा रानी बन जाते हैं। तो राम सीता वाला जो पार्ट है इसमें क्या होता है, इसमें हम विधेय स्थिति से ऊपर, जब विधेय स्थिति में रहते हैं तो विधेय स्थिति से ऊपर हमारी अशरीर स्थिति है। तो जब हम अशरीर बन के अशरीर बाप को याद करते हैं तो हमारे अंदर से मैंपन मेरापन खत्म होता है। कभी किंतु कभी कभी इस अभ्यास में कभी कभी हम कम हो जाते हैं, कभी कभी मैंपन मेरापन आ जाता है, ये स्थिति निरंतर ही रहती है। इससे इसमें जरा भी मैंपन मेरेपन के कारण हमारी क्या स्थिति कैसी होती है, बीच बीच में फेल होते रहते हैं, पास भी होते फेल भी होते, पास लगातार एक रस स्थिति नहीं रहती है। 108 रत्नों की स्थिति एक रस रहती है, वो सदा संपूर्ण निर्विकारी है। ये आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी नहीं बन पाती है, राइट। तो ये जो स्थिति है 16000, इसमें भी पहले हजार ऐसे होते हैं, कहते 1008 का भी गायन है ना, पहले हजार आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि लगभग अशरीर स्थिति और मैंपन मेरेपन के भान से मुक्त हो जाती, निराकारी नहीं बन पाती, या कभी कभी निराकारी बन पाती, मेन इनका पुरुषार्थ अशरीर तक रहता है। अशरीर स्थिति में विक्रम विनाश हो, अशरीर स्थिति में क्या विनाश होता है, मैपन मेरापन, देह से ऊपर अशरीर, देह से परे अशरीर स्थिति, उससे मेरा क्या होता है, देह का मैपन मेरापन, जो आज बनकर देहभान और देह अभिमान, वो खत्म होता जाता है, राइट। और उसके बाद जो आता है वो है 9 लाख, 9 लाख में भी अलग 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 है, लगभग 4.5 लाख जो 9 लाख में दास दासी होते हैं, जो 9 लाख शुरू की पापलोक है, सारे पवित्र है, सारे पवित्र, किंतु उसमें भी जो रॉयल प्रजा बनती है, साधारण प्रजा बनती है, और दास दासियों में भी जो कुछ रॉयल फैमिली के दास दासी होते हैं, कुछ रॉयल प्रजा के दास दासी होते हैं, साहूकार के दास दासी होते हैं, और फिर आम पब्लिक के भी दास दासी, आम प्रजा के भी दास दासी होते हैं। तो ये जो है हमारा, अगर हम विधेयी स्थिति में रहते हैं, विधेयी स्थिति का अभ्यास करते रहते हैं, अर्थात हम अतीन्द्रिय सुख आनंद की स्थिति में रहते हैं, कहते हैं गोप गोपियों से पूछो, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, तो वो स्थिति अगर हमारी रहती है तो हम क्या बन जाते हैं? रॉयल प्रजा बन जाते हैं, फर्स्ट क्लास प्रजा बनते हैं, राइट। पर हमारे अंदर हम विघ्न विनाशक भी नहीं होते, निर्विघ्न भी नहीं रहते, क्योंकि हमारी स्थिति कभी विदेही कभी फिर नीचे, कभी विदेही कभी नीचे, ऐसी स्थिति रहती है ना। बीच बीच में अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं, कभी कभी फिर नीचे भी आ जाते हैं। और फिर जो देही मानी और देह आत्मानी स्थिति का अभ्यास करते रहते हैं, ये आत्माएं फिर कभी देही मानी है कभी नहीं है, कभी देही मानी, देही मानी मना, देही मानी का बात क्या है, दिल में बाबा दिव्य ब्राह्मण जन्म को स्मृति में ला करके बाबा ने जो मुरली सुनाई बाबा के श्रीमत को बार बार रिवाइज रियलाइज करते रहना, सच्चे दिल के लगन से बाबा की मुरली के पॉइंट्स को बार बार दिल ही दिल में रिवाइज करते रहना। दिल माना ये दिल, ये वाला दिल नहीं, फिजिकल दिल नहीं, आत्मा का दिल। दिल में अगर मेरा दिव्य ब्राह्मण शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया तो बार बार इसको रिवाइज, पहले यही रिवाइज करो कि मैं कौन हूं, मेरा दिव्य, मेरे दिल में कौन है, शिव बाबा है, ज्ञान का सागर अर्थात सत्य की समझ का सागर, एबीसीडी का सागर। बाबा दिल में मुझे कह रहा है बच्चे तुम देह नहीं हो, ये देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हो, और तुम आत्मा मन के माध्यम से शरीर को चला रही हो। मन माना विचार भावनाएं वृत्ति और स्मृति के माध्यम से वो आत्मा के पास सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जा से तुम शरीर को चलाती हो, राइट। और अगर तुम ठीक भोजन शुद्ध सात्विक भोजन खाते हो, सत्संग में रहते हो, पवित्रता का व्रत धारण किया है और देवी गुणों की धारणा कर रहे हो, कभी अमृत वेला मिस नहीं करते हो, कभी मुरली कभी मिस नहीं करते हो, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन करते हो और सोते समय बाबा को सच्चा पोता मेल देते हो, तो फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति अगर मेरी होती है तो फिर तब वो एनर्जी, आत्मा की एनर्जी तब शरीर के अंदर प्रवेश करती है। अगर मैं योग करता हूं, खूब योग करता हूं, कि तो मेरे मन में नेगेटिव है, मेरे विचार नेगेटिव है, मेरी भावनाएं दूसरों के प्रति अच्छी नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, मेरी वृत्ति गलत है, लोगों के प्रति देहिक वृत्ति है, लगाव झुकाव प्रभाव वाली वृत्ति है, टकराव वाली वृत्ति है, या मेरी स्मृतियां गलत हैं, पुरानी स्मृतियां हैं जो गलत हैं, देह अभिमान की स्मृतियां हैं, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं उस परिवार से हूं, या कई लोगों की बहुत स्मृतियां पुरानी जन्म की, पुराने जो कर्म किए थे उनकी स्मृतियां रहती हैं, तो कितना भी हम योग करें एनर्जी बॉडी में नहीं जाएगी। अभी की हालत क्या है लोगों की, अभी तो ना तो आत्मा के पास सातों एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर है, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, मन भी नेगेटिव है। अच्छा चलो हमने आत्मा की बैठ, हमने अमृत वेला योग किया, हम सारा दिन कोशिश करते हैं बाबा से कंबाइंड रहे सम्माइंड, किंतु मन नेगेटिव है। तो आत्मा के लिए हमें पावरफुल याद चाहिए, है ना, बुद्धि योग हमारा बाबा से लगा रहे, दिल में बाबा के साथ कुछ और ना हो, राइट। और फिर हमारा मन हमारा मुरली से पॉजिटिव बनेगा, मन हमारा टीम थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो अगर हमारा मुरली, जितना मुरली का हम अध्ययन करेंगे, सच्चे दिल के लगन से बाबा की मुरली के एक एक पॉइंट को हम रिवाइज रियलाइज करेंगे, जैसे आज की मुरली है, कल की मुरली कितनी बढ़िया थी, रोज की मुरली कितनी वंडरफुल है। बाबा ने परसों कहा ना, ऊंचे से ऊंचे बाप के समान बनना है तो क्या करना पड़ेगा, रूहानी याद में मस्त रहो, है ना। तो ऐसे बाबा की मुरली, कल का जो वरदान था अंतर्मुखता की गुफा में रिसर्च करो, है ना, अपने अंदर जाके रिसर्च करो। तो ऐसे मतलब बाबा की जो मुरली के महावाक्य हैं, स्लोगन है, वरदान अव्यक्त इशारा है, एक एक बात इतनी वंडरफुल होती है, उससे हमारी टीम, उससे हमारे विचार पॉजिटिव बनते हैं, उससे हमारी भावनाएं सबके प्रति शुभ भावना शुभ, कोई किसी ने कुछ भी किया हो तो भी हमारे सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना की भावना बनती है, तब हमारे जो है एटीट्यूड वृत्ति हमारी रूहानी वृत्ति आत्मिक वृत्ति बनती है, फिर आत्मिक दृष्टि हम सबको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, तब हमारे क्या होता है, हमारी स्मृतियां पॉजिटिव बनती हैं। तो टीम पॉजिटिव बनेगी तो एनर्जी शरीर में जाने शुरू होती है, फिर मन में, मन तक तो आई किंतु मन से फिर शरीर में पहुंचे। अगर मेरा भोजन रास्तिक है, रास्तिक मना पराठा पकौड़ा समोसा खाते हैं, तली चीजें खाते हैं ज्यादा, तो भी एनर्जी शरीर में जाएगी नहीं, तो मेरी बीमारियां ठीक नहीं होंगी, राइट। अगर तामसिक है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, या हम बहुत मसाले खाते हैं, हॉट स्पाइसेस यूज करते हैं, तो क्या होगा, तो भी एनर्जी उत्तेजना पैदा करते हैं तो एनर्जी अंदर जाए। शुद्ध सात्विक भोजन, फल सब्जियां सलाद अंकुरित रोटी सब्जी दलिया दूध दही ले सकते हैं, तो वो लेते हैं, समय पर लेते हैं, तो भी एनर्जी अंदर जाती है। सत्संग बाबा और मुरली का संग करते हैं तो ही जाती है। जरा भी थोड़ा भी कुछ मुरली के अलावा कुछ और संग करते हैं, मनमत परमत थोड़ी भी डाल लेते हैं अंदर, तो मुरली अंदर जाएगी नहीं, तो बाबा की जो एनर्जी है ना वो बॉडी में जाएगी, हमारी बीमारी से मुक्ति होगी नहीं, समझ रहे। तो बाबा समझाता है, बच्चे तुम्हारा ऐसा है, तुम आत्मा चला रहे हो शरीर को, अब आत्मा की एनर्जी नहीं है, तो उससे क्या करो, सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से मुझे याद करो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है। तो बाबा मुझे अंदर दिल में बैठ के मुझे समझा रहा है, उस बात को अंदर रिवाइज करो, महसूस भी करो, रिलाइज में ना सच्चे दिल से महसूस करो, बाबा दिल में बैठा, बाबा ने मुझे ऐसा कहा, बाबा अभी आया है, संगम का समय है, इसका एक सेकेंड एक वर्ष के बराबर है। बहुत काल का मतलब क्या है, बहुत काल का मतलब ये नहीं 40-50 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, 60 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। हो सकता है मैं 40-50 साल से मैंने 1-2 घंटा योग किया, बाकी 20 घंटा क्या किया, 22 घंटा क्या किया, बाबा याद है तो ठीक है, शेष कर्म हो रहे हैं, और बाबा भूल गया तो वापिस विकर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो 2 घंटा मैंने याद किया, 2 घंटे में तो उसका असर खत्म हो गया, 20 घंटा तो मेरा नुकसान ही हुआ, समझ रहे ना। तो 40-50 साल भी ज्ञान में रहने के बाद कभी हमारी स्थिति नहीं बनती है, कुछ ना कुछ जाने अनजाने, क्योंकि रिटर्न जर्नी पे हैं, कोई ना कोई पाप कर्म हो जाते हैं। चलो अभी तक जो बीत गया बीत गया, बहुत काल का मतलब निरंतर श्वासो श्वास हर सेकेंड संकल्प में अगर हमें स्मृति इमर्ज रहे कि मुझे अब से 1 मिनट में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और कितने सेकंड होते हैं 3600, अगर 1 घंटा भी पावरफुल याद रहे तो कितना हो गया 3600 वर्ष, माना लगभग पौना कल्प, कैसे बन जाएंगे हमारे, कैसी प्राप्ति कैसी प्रारब्ध बन जाएगी। पर अभी से अगर हम अब से भी चलो अभी तक जो बीत गया उसको पुरस्कार लगा दें और अभी से हम निरंतर पुरुषार्थ में लग जाएं तो यही बहुत काल बन जाएगा। एक बार दादी जी बड़ी दादी जी ने पता इस पे डिस्कस किया था कि अभी तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगाओ, अभी से पुरुषार्थ करना शुरू कर दो और निरंतर का पुरुषार्थ करो। अगर स्पेशली दाजों का प्रयोग करना है अपने तन पर अपने मन पर अपने संबंध संपर्क पर अपने अपनी सेवा पर अपने साधनों पर या जो भी कार्य जो भी आपके सामने बाधाएं उन पर करना तो निरंतर का अभ्यास चाहिए। सातों एनर्जी का भंडारा भरपूर होना चाहिए, स्टॉक भरपूर होना चाहिए, तभी आप नेगेटिव वाले को स्टॉप लगा सकेंगे। तो दादी ने इसमें बहुत अच्छी वर्कशॉप कराई थी बच्चों को पांडव भवन में। तो अभी हमको ये इसका बहुत बहुत अटेंशन रखना है कि हमारा जो है हमें जो है क्या करना है। तो अगर हमें सचमुच में ऐसी स्थिति बनानी है तो देहीमानी स्थिति क्या है, पहली देहीमानी स्थिति अगर हमें दासदासी कौन बनते हैं, जो जिनका पांचों कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रियां वो राजा बन जाते हैं। आत्मा राजा नहीं, मन अपने आप से चलाता है, बुद्धि चलाती है, बुद्धि भटकाती है, मन चंचल हो जाता है और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और उसके वशों के चलते हैं। कभी आंख कुछ कहती है ये कर ये देख लो, कभी नाक कुछ कहती है ये सुन लो, कभी कान कुछ कहता है ये सुनो, मुख कहता है ये खा लो, मुख कहता है ये बोलो ये पी लो। तो ये हमें डांस कर, ये ऐसे बच्चे बाबा के बच्चे बनने के बाद भी बाबा रोज अमृतरा भी करते हैं मुरली भी करते हैं तो मन बुद्धि संस्कार के वश में रहते हैं, पांचों कर्मेंद्रिया हमें डांस कराते हैं। तो ऐसे बच्चे जो क्या बनते हैं दास दासी बन जाते हैं। अब मेरा लक्ष्य अंतिम समय की तैयारी में मेरा लक्ष्य क्या है, पहले तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे किसमें आना है। अच्छा बताओ दास दासी में जाना चाहते हैं हाथ उठाओ, दास दासी बनना चाहते हैं, बहुत सारी सीट खाली है, सीटें खाली है, कॉम्पिटिशन भी नहीं है, हाथ उठाओ जो दास दासी बनना चाहते हैं, जो साधारण प्रजा बनना चाहते हैं हाथ उठाओ, रॉयल प्रजा में आना चाहते हैं हाथ उठाओ, थोड़े से लोगों ने हाथ उठाया, माताओं में रॉयल प्रजा बनना चाहते हैं थोड़े लोगों ने, साहूकार जो बनना चाहते हैं हाथ उठाओ, जो 116,108 की माला में आना चाहते हैं हाथ उठाओ, जो 108 की माला में आना चाहते हैं हाथ उठाओ, 108 की माला में तो 500 लोग हाथ उठा रहे हैं, तो कर्नाटक ग्रुप से 105-108 तो तैयार हो जाएंगे ना, बाकी जो उनकी तो आवश्यकता ही नहीं है ना। तो अच्छी बात है, लक्ष्य तो ऊंचाई रखना चाहिए ना। तो चलिए चलते हैं, बस अगले 15 मिनट में हम ये बात कर लेते हैं कि क्या करें, तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहला जो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था पहले तो हमको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बारे में दादी बताती थी, दादी निर्मल शांता और दादी पुट्टू दादी जो थे, जो बाबा की बेटियां थी, तो वो बताती थी कि बाबा 1928 से अंतर्मुखी हो गए थे, जो पहले मतलब लोगों सबसे मिलते जो कम कर दिया था मिलना जो ना लोगों से, अंतर्मुखी ज्यादा रहते थे। और बाबा के राज दरबार अपनी राजाओं के पास जाते थे, देखते राजा कैसे दरबार मंत्रियों से कैसे हालचाल लेता है, इसलिए बाबा ने 1932 से दरबार लगानी शुरू की थी। तो अपनी अंतर्मुखता की गुफा में रह करके, अंतर्मुखता माना अंदर में जो मैं आत्मा हूं, आत्मा मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर के, फिर अंदर से सोचना, निर्णय करना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना पीना, सांस लेना, हाथों से कर्म करना, चलना फिरना, व्यवहार करना, अंतर्मुखता माना निरंतर आत्मा में आत्मा, अंदर में जो आत्मा बाबा से कंबाइन। दादी बड़ी दादी थे ना, दादी प्रकाशमणि जी, उन्हें दादी ने जब से मैं अप्रैल 95 में माउंट आबू आया था, तब से दादी ने कहा था, पांचवें दिन ही मुझे कहा था कि गुप्ता जी आप मुरली के बाद 5 मिनट मुझे पास बैठ के जाना है, कम से कम 5 मिनट तो बैठ के जाना। तो मैं मुरली के तुरंत बाद थोड़ा वॉकिंग करने जाता था 20 मिनट, और फिर दादी के पास आके बैठ जाता था। और दादी फिर कुछ ना कुछ हमको, कुछ ना कुछ जब अकेली होती कुछ ना कुछ बताती थी, या पूछती थी या बताती थी, कर्मों सिखाती दादी प्रकाशमणि जी। लेकिन दादी ने कहा इंचार्ज किसे कहते हैं, तो मैंने कहा दादी उसमें 46 डिपार्टमेंट थे पांडव भवन में, तो मैंने कहा दादी जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनको इंचार्ज कहते हैं, नहीं इसका रियल मीनिंग क्या है। फिर दादी ने, मैंने कहा दादी आप ही बताओ, तो दादी ने कहा जो इन रह के इंचार्ज में ना, जो इन रह के अपनी अपनी बैटरी को चार्ज करते रहते हैं पावर हाउस शिव बाबा से, और सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से अपनी आत्मा को भरपूर करते रहते हैं, और आत्मा को भरपूर करके अपनी बुद्धि को, मन को, संस्कारों को भी वो सातों एनर्जी से भरपूर करते रहते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को, आंखों को ज्ञान, पवित्रता, शांति, सच्चा स्नेह, पति, सुख, आनंद, आठों शक्तियां इन आंखों से दिखाई देनी चाहिए, व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए, ऐसे कानों में भी सातों एनर्जी भरते हैं, नाक में भी, मुख में भी, त्वचा में भी, शरीर के एक एक रोम रोम में सातों एनर्जी भरते रहते हैं, और जो भी उनके संबंध संपर्क में आता है उनको भी सातों एनर्जी से चार्ज करते रहते हैं, उसे कहते हैं इंचार्ज। और जो दूसरों को आंख दिखाते हैं ना, आंख दिखा के गुस्सा करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश, वो आउट चार्ज है। तो दादी ने मुझे सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगा, इंचार्ज और आउट चार्ज। तो हमें क्या बनना है, अंतर्मुखी में ना इंचार्ज, तो इंचार्ज बनकर के हमको रहना है, अंतर्मुखी हमको रहना है। पहला स्टेप यही है, जब अंदर का सुख मिलने लगता है ना, अंदर मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर हम कर्म करते हैं और बड़ी पवित्रता शांति प्रेम से करते हैं, तो अंदर से शांति, अंदर से सुख मिलने लगता है, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाती है। बेहद में सारा विश्व वैराग्य में ना वैर ना राग, वैराग्य का मतलब खाली राग नहीं है, वैराग्य में ना वैर भी नहीं, राग भी नहीं, किसी दुश्मनी भी नहीं, किसी से अटैचमेंट भी नहीं, सारे विश्व में हर आत्मा सबसे प्यार, किंतु किसी से वैर नहीं, किसी से राग नहीं, तो बेहद की वैराग्य, तब जाकर के हम, तब हमारे अंतर्मुखता बेहद की, तब हमारे अंदर में क्या होता है, तब हमारा क्या होता है, दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है, तब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया। हमें भी जब ऐसी आत्माओं को, जो बाह्यमुखी आत्माएं हैं जिनके अंदर राग द्वेष रहता है लोगों के प्रति, ऐसी आत्माओं को शिव बाबा क्या नहीं करता है, दिव्य ब्राह्मण जन्म नहीं देता है। आप भी अपने जीवन को देखेंगे तो आप दुनिया से अलग रहे, हम आत्माएं, मैं अपने को भी देखता हूं और भी हमारे जो बाबा के बच्चे बने हैं वो सब यूजली अंतर्मुखी रहे हैं, पहले से बाह्यमुखी नहीं रहे हैं, बेहद की दुनिया से अलग हैं, हम लोग बचपन से ही अलग हैं, अपने आप को भी देखो आप दुनिया से अलग रहे हैं। तब ऐसे बच्चे को शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म, दिव्य ब्राह्मण जन्म माना मर्जीवा जन्म, तो दिल में हमारे बाबा आ जाता है, और उसको दिल में जो बाबा आया ना, अब इस दिव्य ब्राह्मण जन्म को बार बार इमर्ज करना चाहिए कि मेरे दिल में कौन है, ज्ञान का सागर, सत्य की समझ का सागर, अंदर महसूस करते रहो बार बार, और ये बार बार इस सत्य की समझ को बार बार रिवाइज करना, रियलाइज करना, बाबा की महावाक्य मुरली है, इसी को बार बार रिवाइज करते रहना दिल ही दिल में, इसको ही कहते हैं देही मन स्थिति। देह में रहते हुए जो बाबा की डायरेक्शंस हैं, बाबा की श्रीमत है, शिक्षा है, सावधानियां हैं, फरमान है, मुरली में चार बातें होती हैं, आज्ञा होती है, शिक्षा होती है, सावधानियां होती हैं, और क्या होता है, फरमान होता है। फरमान को उसी दिन फॉलो करना होता है। आज्ञाएं फिक्स होती हैं, सदा पवित्र भाव, निरंतर योगी भाव। शिक्षाएं रोज मिलती हैं मुरली में, कोई ना कोई शिक्षा बाबा देता है, बच्चे ऐसे करना है, सावधानी रहता है, बच्चे तुम ये मत करो, किसी को दुख मत दो, तुम गुस्सा मत करो, तुम ऐसे नहीं करो, बाबा हमको रोज सावधानी देता है। बच्चे शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, बच्चे टाइम पर सो जाओ, सो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठ के बाबा को याद करो, रोज हमें नई नई सावधानियां मिलती हैं, बहुत सावधानियां मिलती हैं। और फिर फरमान मिलता है कि आज हमको ये काम करना है, होमवर्क मिलता है, धारणा के लिए मुख्य सार मिलता है, ये हमारा क्या होता है, फरमान होते हैं। वरदान भी एक तरह का फरमान ही होता है, स्लोगन भी एक तरह का फरमान होता है, अव्यक्त इशारा भी एक तरह का फरमान होता है, जो उसी दिन हमको करना होता है, राइट। तो ये जो हम जब ऐसे उसको बार बार रिवाइज और सच्चे दिल से महसूस करते हैं कि आज मेरा होमवर्क है, शाम तक मुझे इसे कर लेना है, तो ये इस स्थिति को हम कहते हैं देही मानी स्थिति। देह में रहते बाबा के डायरेक्शन को हम बुद्धि में क्या करते हैं, महसूस करते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, ये देही मानी स्थिति है। तो ये दिल में बार बार हम रिवाइज करते हैं, पवित्रता का सागर में दिल में बैठा है, शांति का सागर में दिल में बैठा हुआ है, सच्चे स्नेह का सागर में दिल में बैठा हुआ है, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, सत्य को परखने की शक्ति का सागर, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर, विस्तार को सार बनाने की शक्ति का सागर बैठा हुआ, ऊपर बैठा हुआ, समेटने की शक्ति का सागर बैठा हुआ, अश्लील स्थिति का सागर ऊपर बैठा हुआ, मेरे दिल में बैठा है, निराकार स्थिति का सागर मेरे दिल में बैठा हुआ है, बीज रूप बाप मेरे दिल में बैठा हुआ है, सहन करने की शक्ति का सागर मेरे दिल में बैठा हुआ है, समाने की शक्ति का सागर दिल में बैठा है। इसको आप देखो, करके देखो कि सागर मेरे दिल में बैठा हुआ है, सहन करने की शक्ति का सागर, समाने की शक्ति का सागर, सामना करने की शक्ति का सागर, सहयोग करने की शक्ति का सागर मेरे दिल में बैठा हुआ है। इसको बार बार रिलाइज करते जाओ, सच्चे दिल से महसूस करो, क्या होगा, तो अंदर से खुद फील होता है मेरे दिल में सहन करने की शक्ति का सागर बैठा है। क्योंकि विक्रम विनाश करने, पाप कर्म भस्म करने की विधि क्या है, सहन करके समाने की शक्ति। कोई भी पाप कर्म जो मैंने किया ऐसे विनाश नहीं होता है, वो फाइलें मेरे सामने खुलती हैं, जो मैंने पाप कर्म पिछले दिन में किए होते हैं ना, वो फाइल मेरे सामने खुलेगी और खुल करके फिर वो फाइल खुलेगी। अगर मैं बाबा की याद में रह के अशरीर स्थिति में रह करके मैं अपन मेरापन खत्म करता हूं, मैं अपन मेरेपन का त्याग करता हूं और फिर निराकारी स्थिति में निर्विकारी निराकारी बाप से कंबाइंड होता हूं, तो निर्विकारी स्थिति बनती है। तो उससे मेरे अंदर ऐसे एंडोर्फिन्स, ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं, ऐसा मेरा पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, रिलैक्सेशन सिस्टम ऑन हो जाता है, मेरा आभामंडल इतना बड़ा हो जाता है कि मुझे वो ना दर्द महसूस होता है ना दुख महसूस होता है, वो सहन करने की शक्ति आ जाती है। कितना बड़ा भी सामने वाला कुछ भी कर ले मेरे साथ, कितना भी दुख दे, कितनी भी परेशानी करे, कितना शरीर में तकलीफ हो रही हो, संबंधों में तकलीफ हो रही हो, तो भी कोई मेरी कितनी मर्जी लानी करे, कितनी मर्जी मुझे गलत कहे, तो मैं सहन कर सकता हूं। समाने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है, इससे विक्रम विनाश होते, इससे पाप कर्म भस्म होते हैं, सहनशीलता है ना। यही विधि है, मुझे बड़ी दादी कहा करती थी, जब मैं आया शुरू शुरू में तो मैं सोचता था यहां तो स्वर्ग है, यहां तो सब बहुत अच्छे मिलेंगे, तो दादी ने मुझे कहा नहीं ताजी, ये जितने भी है ना, जो आत्मा है ना, यहाँ पर पांडव भवन में है, हॉस्पिटल में काम करने वाले भाई बहन है, ये आपके पिछले जन्मों के बहुत पुराने संबंधी हैं, उनके साथ जो कुछ आपने किया है गलत किसी जन्म में भी, वो आपसे वापस करेंगे, ब्याज के साथ वापस करेंगे। आपने जो अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा, और ये यही मुक्ति होना, ये सब आपके मूर्तिकार हैं, छेनी हथौड़े से आपकी आंखें बनाएंगे, नाक बनाएंगे, अगर आपने थोड़ी भी आवाज की तो क्या होगा, वो बनाएंगे नहीं, आंखें ऐसी कैसे रह जाएंगी, पत्थर वाली आंखें रह जाएंगी, कान वैसे के वैसे रह जाएंगे। इसलिए एक ही तरीका है शहनशाह बनने का, सहन करके संभाल लेना और सामना करते रहना, सामना माना उनसे उनका सामना नहीं करना है, उनकी तरफ से जो प्रॉब्लम आ रही सामना करते रहो और उनको सहयोग भी करते रहो, भले वो आपके पेपर ले रहे हैं, रोज आपकी गिलानी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपसे बिना बात पे आपको तंग करते हैं, तो भी आपके रास्ते में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो भी आपको क्या करना, उनको सहयोग देते रहना, उनको आगे रखना है। तो तब मुझे समझ आई, मैं शुरू शुरू में बड़ा कंफ्यूज हुआ था कि मैं तो अपना काम बहुत दिल से करता हूं, किंतु फिर भी लोग ऐसे क्यों करते हैं, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ शुरू शुरू के महीनों में ना, कुछ एक डेढ़ साल। तो दादी मुझे समझाती थी, नहीं ऐसे करो ऐसे करो, देवता बनना है, कौन सा देवता बनना है, 108 की माला में आना है कि 16,000 में आना है कि प्रजा में, जैसे मैं आपसे बात करूं ना, प्रजा में आना है, दासदासी बनना है, चॉइस आपके सामने है, तो आप जो चाहो वो करो। अगर सचमुच 108 की माला में आना है तो सहन करके समाना पड़ेगा, और एक बार नहीं सामना करता ही रहना पड़ेगा, समाते ही रहना पड़ेगा, और उनको सहयोग भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्होंने आपके, आपने वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपने किया है, अब वो ब्याज उसका 1000 गुना हो गया, वो ज्यादा करेंगे, और आप सहन करके संभालेंगे तो फिर प्लेन हो जाएगा, संबंध प्लेन हो जाएंगे, अगले जन्म में वही आपके बहुत क्लोज संबंधी बनेंगे, बहुत प्यार, जिनसे आपका बहुत स्नेह हुआ, बहुत नजदीक वाले संबंधी बनेंगे। तो ये राज मुझे तब यहां आके समझ में आया, पहले मैं आता था ना, जब यहां पर आता था, यहां पे आके रहता था 10 दिन 8 दिन, तो सब बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत प्यार से, जैसे यहां आके रहने लगा ना तो प्रॉब्लम शुरू हो गई, है ना। तो यहां जब हम आते हैं ना सर, 1-2 दिन के लिए 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए, बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत प्यार से करते हैं। जब आप यहां आके रहने लगते हैं तो फिर आपको पता लगेगा, फिर फाइलें खुलनी शुरू होती है ना, राइट। तो देही मानी स्थिति से फिर आत्मी आत्मानी स्थिति माना, तब पवित्रता आने लगती है, हम अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज होने लगता है, उनका सामने वालों का इमर्ज होके होता है, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म होने लगता है। इसके द्वारा ही लगाव झुकाव सहन करना पड़ता है ना, ग्लानी होती है तो लगाव खत्म होता है, जिनको आप बहुत अपना समझते हैं उनसे ही फिर प्रॉब्लम आने लगती है, लगाव खत्म होता है, झुकाव खत्म होने लगता है, प्रभाव खत्म होता है, टकराव भी खत्म होता है। ये भी पवित्रता की 3rd डिग्री है। फिर क्या क्यों कैसे खत्म होने लगता है, फिर हम ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचर्य तो बन जाता है, किंतु क्रोध कभी कभी आता है, क्रोध से भी फिर मुक्ति, लोभ से भी मुक्ति, मोह से भी मुक्ति, अहंकार से भी मुक्ति, फिर आलस्य से भी मुक्ति, अलबेलेपन से भी मुक्ति, अलर्ट और एक्यूरेट रहना पड़ता है, शक अनुमान से भी मुक्ति, किसी के अवगुण देखने से भी मुक्ति, बदलने की भावना से भी मुक्ति, चिंता से भी मुक्ति, भय से भी मुक्ति, ये अलग अलग स्टेजेस हैं पवित्रता की, निर्विकारी स्थिति की, और फिर लास्ट में ब्रह्माचारी, 7वां लेवल है ब्रह्माचारी, माना ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता, सत्संग बस बाबा और मुरली का संग, एक गिलास दूध लिया उसमें हमने 1 ml उसमें क्या डाल दिया, जहर डाल दिया, मतलब अगर श्रीमत में हमने 1 ml भी थोड़ी भी मनमत परमत कर दी ना तो क्या होगा, अब वो श्रीमत का असर नहीं होगा, ताकत नहीं आएगी। कई बच्चे, बाबा के बच्चे प्राणायाम वगैरह करते हैं, मुद्रा लगा के बैठते हैं ना, बाबा ने तो कभी मुद्रा लगाई नहीं, हमें ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करना है, भोजन में हमारा ब्रह्मा बाबा की तरह 3 टाइम भोजन करना, कई लोग नेचुरोपैथी करते हैं, सुबह फ्रूटी खाएंगे, 12 बजे तक कुछ खाएंगे नहीं, है ना, ये भी क्या है, हमें नेचुरोपैथी को थोड़ा हमें फॉलो करना है, हमें ब्रह्मा को फॉलो, उनकी दिनचर्या को पूरा फॉलो करना है, हर चीज में फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा एक्यूरेट कंप्यूटर है, तो हमें लंबा समय उससे सुख मिलेगा, मनमत परमत नहीं धारण करनी है, ये ध्यान रखना है, तो ये हमें करता है। तो जैसा हम पवित्रता आती जा रही है, पवित्रता आ रही है, ब्रह्माचारी बन रहे तो 1 सेकंड में पास को फुल स्टॉप लगा देते हैं, पास को फुल स्टॉप लगा के हम सत्य में टिके, परम सत्य भाव से कंबाइंड हो जाते हैं, राइट, और परम सत्य भाव से कंबाइंड हो कर्म करते हैं, कर्म योगी स्थिति आ जाती है, तो इसको शांति कहते हैं। तो पवित्रता शांति क्या, आत्मानी स्थिति है, और जब बाबा से कंबाइंड होकर कर्म करते हैं तो हमारा हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ स्वीकार कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्नेह, सच्चा स्नेह, जैसे बाबा प्यार का सागर है ना, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, तो सच्चा स्नेह, तो इसको आत्मन, जब सच्चा स्नेह होता है तो हमारी विदेही स्थिति, तब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है, हम सूक्ष्म बाप दादा गोद में पहुंच, मन रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म बाप दादा के पास पहुंच जाते हैं, जिसको हम विदेही स्थिति कहते हैं। उसमें पाना था सो पाले काम क्या बाकी, अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, और जब सर्व संबंधों के महिनसार वाली याद हो जाती है तो उसे हम उसमें खो जाते हैं, नदी सागर में समा के सागर के समान लवलीन स्थिति आ जाती है, आनंद की स्थिति आ जाती है, तो आनंद की स्थिति है। और जब आनंद की स्थिति आती है तो क्या होता है, आनंद से फिर हमारी स्थिति कहां जाती है, 2 से 1 की तरफ, हम अशरीरी बन जाते हैं, अशरीरी बनकर जब अशरीरी बाप से बाप को याद में रहते हैं तो क्या होता है, हमारी मैं अपन मेरापन समाप्त होता जाता है, देवान देवीमान, देवीमान के संबंध संपर्क, देवीमान के पदार्थ, इनसे हमारी बुद्धि निकलती जाती है, इसमें ऊपर नीचे होता है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की, सेव करने की शक्ति आ जाती है। तो इस तरह से पुरुषार्थ करते करते हमारी स्थिति आती है, निराकारी स्थिति आ जाती है, मैं अपन मेरापन छूटा तो निराकारी, निराकारी बनकर निराकारी, निराकारी बाप से कंबाइंड होते तो निर्विकारी स्थिति आती है। तो वो जो है उसका वेग होता है, विकारों का वेग होता है, काम विकार का वेग है, क्रोध की वेग आता है अंदर से, इंपल्स आती है जोर से, पैशन आती है, लोभ का भी वेग होता है, ये वेग को सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, सामना करने की शक्ति आ जाती है, सेव करने की शक्ति आ जाती है। तो ये विक्रम विनाश होने से क्या होता है हमारे अंदर, हमारी वो एनर्जी इतनी बढ़ जाती है हमारे अंदर, बहुत एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी नंबर वार, इसलिए कहता सो मण के उनमें भी नंबर वार है ना, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति कितनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमहंसा परमहंसा। तो इस तरह से हम पुरुषार्थ करते हैं उससे हमारी स्थिति ऐसी बनती जाती है। और जब हम निरंतर निराकारी रहते हैं, जैसे दादियों को हमने देखा कर्मातीत होते जाते, विक्रम विनाश होते जाते, तो हम निराकारी भाव से मास्टर बीज रूप बन के बीज रूप से कंबाइंड रहते, असतन जैसे दादियों ने जो पुरुषार्थ किया। तो इस तरह से हमारी तैयारी, निरंतर तैयारी चलते रहे तो हम अंतिम पेपर में एक सेकेंड में पास हो जाएंगे। ओम शांति। अभी आज का तो इंटरनेशनल योग है ना, सभी हम बहनें भी आ सकती हैं और भाई लोग भी आ सकते हैं स्टेज पर, उनको आना है।
आपने अति सरल सहज रीति से इस विषय को स्पष्ट किया, आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।